Hare Krishna, Sunday Love Feast Lecture, given in Dwarka Temple on 17 January 2016 on the topic Mome Chale Ho To Prashad Kaan Se Le by myself, Prashant Mukund Das.
Jnana Timrandhasya Jnananjana Shalakayam Chakshurun Militam Yena Tasme Shri Gurve Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupam Kadamayam Dadate Sabdakantikam Vandeham Shri Gurun Shri Yuta Padkamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagan Raghunathan Mitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijan Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagan Lalita Shri Vishakhan Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Bhakt Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhan Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhasya Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavnebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Tinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschati Deshatarine
Hare Krishna तो आप सबका स्वागत है आज के इतवार के कार्यक्रम संडे लव फीस्ट काफी दिनों से चल रहा है रेगुलरली तो आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं जो हमारा शीर्षक है उसके बारे में कितने लोग जानते हैं क्या टॉपिक है आज कम लोग जानते हैं आप लोगों को मैसेजेस नहीं आते बाकी लोगों को अगर मैसेज नहीं आते तो अपना नंबर आगे जो काउंटर्स लगे वहां देख के जाइए ताकि आपको अगली बार से टॉपिक जो है शीर्षक उसका मैसेज आए तो आज का मैसेज है कौन बताएंगे प्रभु जी बताएंगे हाँ बताएं प्रभु जी
मुंह में छाले हैं तो प्रसाद कान से
हाँ तो हमारा टॉपिक था मुंह में अगर छाले हैं तो प्रसाद कान से लें एक व्यक्ति पूछ रहे थे कहाँ से लें तो हमने कहाँ से नहीं ले कान से लें तो प्रसाद कान से लेने का मतलब है मुंह में अब छाले हैं तो अभी कुछ लोग बोल सकते हैं कि प्रभु जी हमारे मुख में तो कोई छाले नहीं है हम तो एकदम स्वस्थ हैं फिट हैं एकदम फिर ये आप छाले की बात कौन से छालों की बात कर रहे हैं जब हमसे बोला जाता है मंदिर में आते हैं कि भगवान के नामों का जप करिए जोर जोर से भगवान के नामों का उच्चारण करिए भगवान की कथा के बारे में बोलिए अगर आपसे रिक्वेस्ट करी जाए कि आज ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है मैं व्यास आसन पे बैठकर लेक्चर नहीं दे सकता हूँ सो आई रिक्वेस्ट टू एनीबडी ऑफ यू तो आए और यहाँ पर कृष्ण के बारे में वर्णन करें तो कितने लोगों के मुख से कृष्ण के बारे में निकलेगा उनका गुणगान कृष्ण के बारे में इतना सुनते हैं लेकिन क्या बोल सकते हैं वही व्यक्ति बोल नहीं सकता भगवान का नाम भगवान के गुण भगवान की लीलाएं जिनके मुख में छाले हैं जो दिखते नहीं है अविद्या के छाले किसके छाले अविद्या अविद्या मतलब अज्ञानता के छाले अज्ञान नहीं है हमारे पास में कि भगवान कौन है अभी बोला जाए सचिन तेंदुलकर का ग्लोरिफिकेशन करें तो सब बोलेंगे उन्होंने सेंचुरी बनाई नंबर वन क्रिकेट प्लेयर थे रिटायर हो गए ऐसा था वैसा था अमिताभ बच्चन के बारे में ग्लोरिफिकेशन करिए और सब शुरू हो जाएंगे माइक छीनना पड़ेगा छोड़ दीजिए और बोलते जाएंगे अरे वो ऐसे थे लेकिन कृष्ण के बारे में बोलने के लिए कहा जाए तो आवाज ही नहीं निकलेगी इसका कारण क्या है कि हमारे मुख में क्या है अविद्या के तो अगर अविद्या के छाले हो जैसे मुंह में छाले होते हैं तो स्माइली लगाया जाता है ना ताकि हमारे मुख पे मुस्कुराहट आ जाए। तो अगर मुख में भगवान का कृष्ण का नाम ना हो, अविद्या के छाले हो, तो प्रसाद मुंह से लेने की बजाय कहां से लेना चाहिए? कान से। हाँ, तो ये कान से जो है औषधि है भगवान की कथा, कृष्ण कथा। जब ये औषधि कानों में जाती है तो फिर ये छालों के ऊपर स्माइल लगता है, है ना। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा चैंट एंड बी हैप्पी, जब ये और सदा प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। वो क्यों? क्योंकि जब हम भगवान के नामों को बोलते हैं, जब भगवान की कथाओं को सुनते हैं, तो हमारे कान में जाने के कारण हमारे हृदय में जो अनर्थ हैं, कितने अनर्थ हैं? 6 प्रकार के अनर्थ, काम, क्रोध, लोभ, आगे मोह, मद, मत्सर्य। काम का मतलब इच्छाएं, समाप्ति नहीं होती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। एक दुकान होती ठीक था, और एक बड़ी बिल्डिंग होनी चाहिए, और एक बिल्डिंग होनी चाहिए, और उसके कारण भजन गाया। काम, इच्छाएं, क्रोध। लोग पूछते हैं प्रभु जी 2 साल से मंदिर में आ रहे हैं लेकिन क्रोध शांत नहीं होता, बच्चों के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, पति के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, समाज के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, क्रोध समाप्त नहीं होता। काम, क्रोध और लोभ, लालच हमारा खत्म नहीं हो रहा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, आसक्ति। परिवार में इतनी आसक्ति है कि टेम्पल हॉल खाली पड़ा हुआ, इधर के इधर, यहाँ पर संडे लव फीस में पूरा भरा होता था, अभी खाली। क्यों? ये परिवार में आसक्ति है, चले गए बाकी लोग। लोभ, मोह, मद, अहंकार। थोड़े से 1-1.5 साल मंदिर में क्या आ गए, कुछ श्लोका क्या याद कर लिए, गीता के जपना सीख लिए, तिलक लगाना सीख लिए, तो अहंकार आ गया, मैं श्रेष्ठ भक्त हूँ। अहंकार, मद और मत्सर्य। दूसरा व्यक्ति अगर कोई अच्छी सेवा कर रहा है तो उसको देख करके बोलना अरे वो हो ही नहीं सकता। जैसे श्रील प्रभुपाद जी एक कथा बताते थे कि एक व्यक्ति थे कलकत्ता में, वो जज बन गए, तो उनका मित्र क्या कहता है, अरे मालूम है हमारे जो मित्र थे वो जज बन गए हैं कलकत्ता के। दूसरा कहता हो ही नहीं सकता। कह रहे नहीं, मैंने देखा अखबार में, नाम निकला उनका, वो जज बन गए हैं। कह रहे झूठी खबर होगी। तो ये क्या है, जलन की भावना। दूसरा व्यक्ति अच्छा भक्त बन जाए ये विश्वास ही नहीं होता हमको। तो ये 6 प्रकार के अनर्थ, अनर्थ का मतलब जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, अर्थहीन, बेकार की बातें, उसमें लगे हैं। अरे प्रभु जी वहां खड़े थे, उससे बात कर रहे थे, लगता है उससे ज्यादा प्रेम करते हैं। ये मन में भावना चल रही है हमारे ना, तो फिर हमने भगवान कृष्ण और भगवान की भक्ति के बारे में तो कुछ समझा ही नहीं। तो अगर इस प्रकार की भावनाएं, अनर्थ हमारे हृदय में, ये सर्प बैठे हैं और डस रहे हैं बार बार। तो कहते हैं जब बारिश के दिनों में सांप जो होते हैं वो बाहर निकल आते हैं, है ना, सुना, और बाकी दिनों कहां रहते हैं, छेद के अंदर, बिलों के अंदर। सर्पों के बिल होते हैं, उनके अंदर रहते हैं। जब पानी बारिश का उनके अंदर जाता है तो सांप धीरे धीरे करके बाहर आ जाते हैं। तो अभी हमारे कान के जो छिद्रों से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर के सर्प अंदर प्रवेश कर गए हैं, उनको बाहर निकालने का तरीका क्या है? इनमें भी पानी भरना पड़ेगा, स्विमिंग नहीं करनी है इनको। पानी भरने का मतलब है कृष्ण कथा की वृष्टि, वर्षा हो तो सारे के सारे सर्प बाहर निकल जाएंगे। तो सारे सर्प बाहर आएंगे। जाते कैसे हैं? जब हम टेलीविजन देखते हैं, जब हम FM सुनते हैं, जब हम परिवार के ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कृष्ण भक्त नहीं है और उनका संग अधिक करते हैं, बहुत ज्यादा, तो कान के अंदर वो जाते हैं सर्प, काम, क्रोध, लोभ, मोह के। लेकिन ये बाहर कैसे निकलेंगे? कृष्ण कथा को सुनने से। तो ऐसा नहीं है कि हम ऐसा वर्णन कर रहे हैं तो इसलिए आपको करना पड़ेगा। तो ये कानों की औषधि, कानों का प्रसाद क्या है? भगवान की कथा। तो श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में, 5वें स्कंद में बहुत सुंदर वर्णन हुआ है। कहते हैं यत संग लब्धम निज वीर वैभवम तीर्थम मोह संस्पृशताम हि मनसाम हर त्यजो अनंत श्रुत भी गत अंगजम कोवे न सेवेत मुकुंद विक्रमम। इसका अनुवाद पढ़ते हैं। इसमें लिखा है जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति शुद्ध भक्ति उत्पन्न कर लेता है उसके शरीर में सभी देवता तथा उनके महान गुण यथा धर्म, ज्ञान तथा त्याग प्रकट होते हैं। सभी देवता कहाँ रहते हैं? भगवान के भक्त के शरीर के अंदर। इसीलिए कहते हैं जब एक शुद्ध भक्त चलता है तो 33 करोड़ देवी देवता उसका पीछे पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान का क्या है? वासुदेव का भक्त है। इसके विपरीत जो व्यक्ति भक्ति से रहित है और भौतिक कर्मों में व्यस्त रहता है उसमें कोई सद्गुण नहीं आते। उसमें दुर्गुण ही दुर्गुण होते हैं, सद्गुण कोई नहीं होते। भले ही कोई व्यक्ति योग अभ्यास में दक्ष क्यों ना हो, योग कर सकता है, अपनी कमर को टेढ़ा मेढ़ा कर सकता है, सुबह 5 बजे से 7 बजे तक दवाइयां भेज सकता है, लेकिन अपने परिवार और संबंधियों का भली भांति भरण पोषण करते हो, वे अपनी मनोकल्पना द्वारा भगवान की बहिरंग शक्ति की सेवा में तत्पर होते हैं, भला ऐसा पुरुष में सद्गुण कैसे आ सकते हैं। फिर आगे इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों की संगति करने से, जिनके लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मुकुंद ही सब कुछ है, भगवान के यशस्वी कार्यों को सुनकर शीघ्र ही समझ सकते हैं। कैसे? सुनकर के, भगवान के कार्यों को सुनकर हम मुकुंद मुक्ति के दाता के बारे में समझ सकते हैं। मुकुंद के यशस्वी कार्य इतने सक्षम हैं कि इनको सुनकर ही भगवान की संगति प्राप्त की जा सकती है। निरंतर उत्साह पूर्वक भगवान के यशस्वी कार्यों का वर्णन सुनते रहने से परम सत्य श्री भगवान ध्वनि तरंगों के रूप में हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, ध्वनि तरंगों के रूप में। तो ये जाएगी वर्षा अंदर और सांप बाहर आ जाएंगे और समस्त कलमशों को दूर कर देती है। दूसरी ओर यद्यपि गंगा स्नान से मल तथा संदूषण घटते हैं, किंतु स्नान तथा पवित्र स्थानों के दर्शन से दीर्घ काल के अंतर ही हृदय स्वच्छ हो पाता है। कौन ऐसा विज्ञ पुरुष होगा जो जीवन की सिद्धि के लिए भक्तों की संगति नहीं करना चाहेगा? तो भक्तों की संगति करने से, कृष्ण कथा का निरंतर श्रवण करने से क्या होगा? अंदर कृष्ण कथा की तरंगे जाएंगी और काम क्रोध लोभ लालच सारा कुछ बाहर निकल जाएगा। तो जब मुंह में छाले हो, भगवान की कथा गुणगान नहीं कर सकते, भगवान के नामों का जप नहीं ले सकते, तो सिर्फ एकमात्र क्या कार्य करना चाहिए? श्रवणम श्रवणम श्रवणम। क्या करना चाहिए? सब लोग बोलिए। हाँ, तो भगवान मुकुंद के जो यशस्वी कार्य हैं, भगवान के गुण, भगवान के रूप, भगवान की लीलाएं, भगवान के नाम, इनको निरंतर सुनना चाहिए। गंगा स्नान करने जाते हैं, हरिद्वार चलेंगे जी, हरिद्वार चलेंगे, शरीर शुद्ध हो जाएगा आपका, लेकिन हृदय शुद्ध कैसे होगा? हृदय के अंदर गंगा जल टच नहीं होता है। हृदय को शुद्ध करने का एकमात्र तरीका है भगवान की कथाओं को सुनना। तो आप लोग बोलेंगे कि हम लोग भगवान से मिलना चाहते हैं, भगवान की कथाओं से नहीं मिलना चाहते। अर्जुन को भगवान ने भगवत गीता का उपदेश दिया, उपदेश लेने के बाद में भगवान अपनी लीलाएं समाप्त कर वापस गोलोक गमन कर गए। जब अर्जुन अकेले थे और उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या चुनाव करूं अपने जीवन में, मैं बड़ा अकेला हूं, बहुत परेशान हूं, मैं किससे गाइडेंस लूं, तो उन्होंने भगवान के उपदेश भगवत गीता को याद किया। और जब उन्होंने एक श्लोक को याद करना शुरू किया और एक एक श्लोक ध्यान से पढ़ने लगे, तो उनको ऐसा लगा कि साक्षात कृष्ण मेरे सामने है। तो मतलब भगवान और भगवान की कथाओं में कोई भेद नहीं होता है, भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं होता, भगवान और भगवान के प्रसाद में कोई भेद नहीं होता है। तो जो कृष्ण कथा जब इस व्यास आसन पर बैठकर बोली जाती है और उसको जब भक्त सुनते हैं, तो ये कुछ और नहीं है, ये क्या है? कानों का प्रसाद। सब लोग मुख के प्रसाद के लिए तो भागेंगे अभी 2 बजे के बाद, लेकिन कान के प्रसाद के लिए जो व्यक्ति भागता है ना, उसी का हृदय पवित्र होता है और उसके मुख में अविद्या के छाले समाप्त हो जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। कुछ लोग बोलते हैं तो कहता है, अरे यार कितना गंदा बोलता है यार, हर वक्त गाली गलौज गंदी बातें हैं, इधर उधर की चुगली करता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, सब कहते हैं अरे उनका संग करो ना, 15 मिनट भी बैठो तो इतनी कथाएं सुनाते हैं वो, क्यों? जैसा सुनोगे वैसा बोलोगे, सुनोगे नहीं तो बोलोगे नहीं। तो इसलिए कैसे सुनना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, इसके बारे में भी आज वर्णन करेंगे। इस तरह से नहीं होना चाहिए कि जैसे बताते हैं कि एक बार एक व्यास आसन पर एक व्यक्ति बैठे थे भक्त, और मतलब हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के नहीं थे, बाहर के थे, तो वो कथा करने लगे। और जैसे बाहर के आपने कथावाचक देखे हैं, कृष्ण कथा कौन सी कथा सुने, ये भी लोग प्रश्न पूछते हैं। आस्था चैनल या फिर दिशा चैनल पर बहुत भागवत कथा वाचक आते हैं, गीता के प्रवचन देते हैं, क्या उनको सुन सकते हैं प्रभु जी? तो ऐसे ही एक बार एक व्यक्ति थे, वो कथा कर रहे थे जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के नहीं थे, तो और बाहर के सारे भक्त ऐसे बैठे थे। अब बाहर के जो प्रवक्ता होते हैं ना, उनके अंदर गुण नहीं होते, क्योंकि प्रवचन देने से पहले जो आप बोल रहे हो उसको अपने जीवन में अपनाया हुआ होना चाहिए। मैं खुद 16 माला जप ना करूं और आपको बोलूं करिए करिए 16 माला जप करिए, उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा, उसका कोई असर नहीं होगा। तो पहले अपने जीवन में अपनाएं, फिर दूसरों को बोले। तो वो बाहर के जो स्पीकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मुंह में बीड़ी या फिर गुटखा या पान, देखेंगे उनके दांत काले होते हैं और वो कथा बड़ी सुंदर सुंदर करते हैं, लंबे लंबे बाल होते हैं और बहुत ही सुंदर कपड़े भी पहनते हैं। तो ऐसे ही एक कथावाचक थे और कथा कर रहे थे, तो जब वो गुटखा खाकर कथा करते थे कृष्ण की सुंदर, तो उनके मुख से थूक की वृष्टि होती थी आगे बैठे भक्तों के ऊपर, और खूरा थूक के जो ड्रॉप्स थे, बूंदे थी, गिरती थी, तो जो नजदीक बैठे होते थे वो ज्यादा कृपा प्राप्त करते थे। तो ज्यादा कृपा जब उनको मिलती थी तो इस तरह से चलता रहा। तो एक दिन उन्होंने बोला, बोला तो शास्त्र की बात लेकिन गलत व्यक्ति बोला, चीटिंग करके बोल रहा, देख करके बोल देता है लेकिन अपनाता नहीं है। उसने बोला कि जो कृष्ण कथा का वर्णन करता है उसके मुख में गंगा जी विराजमान होती हैं। सच बात है, बिल्कुल सच बात। कृष्ण कथा कि जो अभी ये जो वाइब्रेशंस आपको मिल रही हैं, ये गंगा स्नान हो रहा है आपके हृदय का, सबका हृदय स्वच्छ हो जाएगा एकदम बाहर निकलने के बाद। तो ये पावर है कृष्ण कथा की। तो उसके मुख में उसने कहा गंगा जी प्रवेश कर गई हैं। तो व्यक्ति बोला वाह वाह बहुत अच्छा, आनंद आया महाराज आज। फिर महाराज बोलते हरे कृष्णा, तो ऐसे पूरा मुंह पहुंचता अपना व्यक्ति हर एक बैठा हुआ। थोड़े समय बाद क्या हुआ, दूसरे दिन उनके लिए प्रसाद बना के लाए, जैसे भक्त लाते हैं हम लोगों के लिए प्रसाद बना के लाते हैं घरों से, लीजिए प्रभु जी आपके लिए प्रसाद लाए। तो वो एक सूजी का हलवा या फिर बेसन का जो हलवा रहा होगा मिला के लाया, बोले महाराज जी कथा शुरू करने से पहले आपके लिए प्रसाद है। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा बच्चा रख दो, यहाँ रख दो। प्रसाद उठाया, खाया, जैसे खाया उआ सारा बाहर निकाल दिया। तो क्या मिला है इसके अंदर, कह रहे कुछ खास नहीं, बस बेसन है, चीनी है और घी है और मेरे माँ की अस्थियां। और मेरी माँ की अस्थियां? बोले माँ की अस्थियां मतलब? बोले हम बहुत गरीब हैं, हमारी माँ जो थी उनकी बहुत इच्छा थी कि मेरे मरने के बाद मेरी अस्थियों को कहाँ विसर्जन किया जाए, गंगा में। तो मुझे कल ही पता चला कि आपके मुख में गंगा जी विराजमान है, तो मैंने सोचा पैसा खर्च करने से अच्छा यही विसर्जन कर दूं। तो विसर्जन कर दिया उसने। तो इसी तरह से कई कथावाचक आपको मिलेंगे टीवी चैनल पर, जैसे दूध होता है और एक दूध को सर्प मुंह लगा जाए तो जहरीला दूध होता है, और उसको अनजाने में कोई व्यक्ति पी जाए तो क्या होगा, जिंदा रहेगा मर जाएगा? मर जाएगा। देखने में दूध है, पूछेंगे क्या पिया, दूध पिया ताकत आएगी, लेकिन बाद में फिनिश खत्म। तो कौन सा दूध पिए ये भी पता होना चाहिए। तो इसलिए आज हम श्रवण करेंगे, क्या सुने, कब सुने, कैसे सुने और किससे सुने, ठीक है। तो ये चार चीजें हमें वर्णन कर रहे हैं, इसको ध्यान पूर्वक सुनेगा। सबसे पहले क्या सुने, दुर्गा जी के भजन सुने। जैसे कल हम किसी व्यक्ति से मिले थे, कह रहे थे आपके इस्कॉन वाले बहुत अच्छी चीजें निकालते हैं, गीता निकाली है और भागवत निकाली है, लेकिन टाइम किसके पास है इतना पढ़ने का, है? वो आप साई सीढ़ी वाले जो है ना उनकी कॉपी क्यों नहीं, उनकी कॉपी क्यों नहीं करते, वो लोग सीढ़ी निकालते हैं भजन संध्या की और वो सलाह वाह हा सुबह क्या धुनी लगती है, वाह मजा आता है, गाड़ी चलाते जाते ऑफिस में तो वो कीर्तन सुनते हैं, अभी कुछ मालूम नहीं उसको इस्कॉन के बारे में, बस बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं। तो बोले बहुत अच्छी सीढ़ी होती है आप भी बनाइए। फिर मैंने उनको एक प्रभुपाद जी की सीढ़ी दी, सुनी तो बोले अरे ये तो बहुत अच्छी है, तब उनको समझ में आया। तो लोगों को मालूम नहीं क्या सुनना चाहिए, साईं बाबा के भजन सुन रहे हैं, शिव जी के भजन सुन रहे हैं, दुर्गा जी के भजन सुन रहे हैं और बोलते क्या है, आहा हम तो रोज श्रवण करते हैं। श्रवण करना क्या है ये मालूम होना चाहिए। तो गोपियां गोपी गीत में वर्णन करते हुए कहती हैं, तव कथा अमृतम ताप्त जीवनम कवि भिरेणितम कल्म चाप हम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ये भूरिदा जना। तो क्या सुनना चाहिए, तो गोपियां वर्णन करती हैं, तव कथा मृतम कृष्ण की कथा को सुनना चाहिए, तप्त जीवनम जो ये जलते हुए लोग हैं तप रहे हैं संसार में, कभी इसका दुख कभी उसका दुख, कभी परिजनों का दुख कभी स्वजनों का दुख, और सबसे ज्यादा दुख अपने लोग देते हैं जिनके लिए हम पूरा जीवन निकालते हैं ना, सबसे ज्यादा दुख वही देते हैं, वही पत्नी बच्चे रिश्तेदार जिनके लिए हम सबको त्याग करके उनका साथ रहते हैं, आप देखेंगे वही सबसे ज्यादा कष्ट देते हैं। और व्यक्ति दुखी होता है ना तो उन्हीं के वचनों से होता है, कोई पड़ोसी बोल दे तो उतना दुख नहीं होता जितना जब अपना बच्चा अपना पति अपनी पत्नी बोले तो बहुत दुख होता है व्यक्ति को। तो ऐसे व्यक्ति दुखी हैं तप्त जीवनम, तपते हुए जीवों के लिए कृष्ण कथा एकमात्र औषधि है और कुछ नहीं है। कथा का रेगुलर निरंतर श्रवण करना चाहिए, नित्यम भागवत सेवाया रोज भागवत कथा को सुनना चाहिए, गीता को सुनना चाहिए। और ऐसी कथाएं क्या करती हैं, श्रवण मंगलम, इसको श्रवण करते ही आपके जीवन में क्या आएगा, मंगल, मंगल ही मंगल, मंगलवार नहीं आएगा, मंगल मतलब अच्छा दिन आएंगे आपके जीवन में। आते क्यों नहीं है, क्योंकि सुनते हैं एफएम बुराइयां, ये सुनने में बड़ा मजा आता है, रस तो उसी में आता है ना भौतिक संसार का, ये जाएगी नहीं, इससे लेयर लगी हुई है, तोड़ना पड़ेगा इसको। इसको तोड़ने के लिए भगवान ने एक मंत्र दिया, उस मंत्र को जपने से ये लेयर टूटती है और फिर कृष्ण कथा इसमें प्रवेश करती है। कौन सा मंत्र है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कहते हैं श्रवताम स्वकथाम कृष्णम पुण्यम श्रवणम कीर्तनम हृदन्ते स्तुतो हि अभद्राणि विघ्नोति सुहतम सताम। जो व्यक्ति कृष्ण की कथाओं का श्रवण करता है और कृष्ण की कथाओं का प्रवचन करता है, इससे बड़ा दानी कोई है ही नहीं। पुण्यम श्रवणम कीर्तनम। अब लोग लगे हुए हैं, कहां गए थे जी? वैष्णो देवी गए थे, 16 किलोमीटर पैदल चलकर आए, पांव में दर्द हो रहा है, 8 बजे सोके उठ रहे हैं, 10 बजे सोके उठ रहे हैं या छुट्टी कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते 15 मिनट एक घंटा भगवान कृष्ण की कथा सुनना पुण्यम श्रवणम कीर्तनम, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। और गोपियां क्या कह रही हैं कि जो व्यक्ति भगवान कथा का प्रवचन करता है उससे बड़ा कोई दानी नहीं है। तो आप यहां से श्रवण करके जाएं और इसके अपने परिवार के लोगों को बोलें तो आप सबसे बड़े दानी बन जाएंगे। भगवान कहते हैं मैं उस व्यक्ति का ऋणी हो जाता हूं जो व्यक्ति भगवान की कथाओं को दूसरों को बताता है, उनके रसिक भक्तों को, जो भक्त यहां पर अपना घर परिवार छोड़कर कथा सुनने आए हैं उनको जो कथा सुनाएगा भगवान उसके ऋणी हो जाएंगे और वो भगवान का सबसे प्रिय बंधु बन जाएगा। आप चाहते हैं कि नहीं भगवान के प्रिय बनना? चाहते हैं कि नहीं? खाली इधर वाले चाहते हैं, कह रहे कोई बात नहीं नर्क चले आएंगे, कहीं भी चले आएंगे, टेंशन फ्री घूम फिर के आ जाएंगे। चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो बोलिए हरी बोल। भगवान का अगर प्रिय बनना चाहते हैं तो कथाओं का निरंतर श्रवण के साथ साथ उसका कीर्तन उसका प्रवचन भी करना चाहिए। प्रभु जी हमें तो मौका ही नहीं मिलता कभी व्यास आसन में बैठने का। अरे जारे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश, जिसको मिलो उसको कृष्ण के बारे में बताओ, आज हमने ये सुना आज हमने ये सुना, ये सबसे बड़ा पुण्य है जीवन का, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। श्रवणम कीर्तनम पुण्यम श्रवणम कीर्तनम, तो सुनना चाहिए। और चाणक्य पंडित से किसी ने पूछा कि कब सुने क्या सुने, तो चाणक्य पंडित कहते हैं व्यक्ति को सुबह सुबह उठकर चोरी की कथाएं सुननी चाहिए। किसकी कथाएं सुननी चाहिए? चोरी की कथाएं। और दोपहर में व्यक्ति को परस्त्री अपहरण की कथाएं सुननी चाहिए, स्त्री के अपहरण की कथाएं। और रात्रि में जुए और लड़ाई की कथाएं सुननी चाहिए, इससे जीवन शुद्ध हो जाता है, चाणक्य पंडित कहते हैं। अभी आप कहेंगे है चाणक्य पंडित ऐसा कैसे बोल के चले गए? सच में बोल के गए चाणक्य पंडित। चाणक्य पंडित ने कहा सुबह सुबह चोरी की कथाएं सुने तो सबसे बड़े चोर कौन है? कृष्ण। हम चोरी करते हैं तो जेल में जाते हैं, वो चोरी करते हैं तो अल्टर में जाते हैं, तो इसलिए वो माखन चोर है, हृदय के चोर है, चित चोर है, तो ऐसे चोर की कथा सुबह सुबह सुननी चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने मॉर्निंग क्लास में बनाया भागवतम की कथाएं, सुबह चोरी की कथाएं सुननी चाहिए। दोपहर में पर स्त्री ग्रहण अपहरण की कथाएं, मतलब रामायण की कथाएं। रावण किसको लेके गया? पर स्त्री को उठा के लेके चला गया, तो इसके कारण वो जो कथाएं हैं वो दोपहर में सुननी चाहिए। और रात्रि में शाम के संध्या के समय चोरी और जुए की कथाएं, कौन सी कथाएं? महाभारत और भगवत गीता। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इवनिंग क्लास दिया भगवत गीता क्लास, इवनिंग में गीता सुने, सुबह भागवतम सुने, दोपहर में रामायण पढ़े, तो ऐसा व्यक्ति का हृदय पूरा निर्मल स्वच्छ साफ हो जाएगा बिल्कुल। तो आप लोग भी सुनेंगे चोरी की कथाएं सुबह, दोपहर में परस्त्री ग्रहण अपहरण, और रात्रि में चोरी और जुए की कथा, लड़ाई और जुए की कथाएं। तो किससे सुनना चाहिए? किसी से भी सुन ले टीवी ऑन करके, किसी से भी सुन सकते हैं। उन्हीं से सुने जो भगवान के परंपरागत भक्त हैं, जो भागवतम को सुनकर अपने जीवन में अपनाने का प्रयास कर रहे हैं या अपना चुके हैं। ऐसे से ना सुने जो कथा सुनाने के बाद टेंट के पीछे आके बीड़ी पीता है। हाँ देखिए ऐसे बहुत सारे हैं, देखा है हमने, भागवत कथा करते हैं और कथा करने के बाद पीछे आकर बोलते हैं चाय बना दो या बीड़ी पीते हैं, कहते हैं क्योंकि 3 घंटे कथा करिए तो गले के अंदर ड्राइनेस हो गई है, तो बीड़ी पीने से क्या होता है अगले 3 घंटे हम बोल पाएंगे। ये कथावाचक नहीं है, कंसेप्ट और कंटेंट सेम है, जो वो बोल रहे हैं वो सेम है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ही जहरीला और विषैला है, क्योंकि वो व्यक्ति अपने जीवन में अपना नहीं रहा या अपनाने का प्रयास भी नहीं कर रहा है। तो परंपरागत भक्त जो कि श्रीमद् भागवतम को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास कर रहे हैं उनसे हमें सुनना चाहिए। तो फिर अब ये प्रश्न होता है कि श्रोता और वक्ता के क्या गुण होने चाहिए सुनने के लिए, इस औषधि को लेने के लिए क्या गुण है? जैसे डायबिटीज की जब बीमारी होती है तो कहते हैं ये चीजें आपको लेनी है, ये चीजें आपको नहीं लेनी है, मेडिसिन लेनी है, मॉर्निंग वॉक करना है, हाँ आपको आयुर्वेदिक दवाइयां लेनी है, रेगुलरली लेनी है। इसका कोई क्योर नहीं है, इलाज नहीं है। जब तक दवाई लेंगे तब तक काम चलता रहेगा। जिस दिन दवाई लेनी बंद, जिस दिन कथा सुननी बंद, उस दिन काम बंद। तो फिर क्या इसके नियम है? तो भागवतम में इसके नियम बताए गए हैं, पद्म पुराण में इसके नियम बताए गए हैं। ये बच्चे बहुत अच्छे अच्छी ध्वनि निकाल रहे हैं, इनको बाहर ले जाए कृपा करके, जिनके भी हैं प्लीज। आप लोग जो मूवमेंट कर रहे हो बैठ जाइए प्लीज, बीच में से घूमिए नहीं। बच्चे को बाहर ले जाइए, माता जी हरे कृष्णा, बाहर ले जाइए थोड़ी देर के लिए। हरे बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पद्म पुराण के वैष्णव खंड में चौथा अध्याय के 10वें श्लोक में बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। पद्म पुराण कहती है, श्रोतार्थ निरूपयन्ते श्रीमद् विष्णु कथाश्रय प्रवरा आवृष्यति श्रोतोर् द्विविधा मतः। उसमें बताया श्रोता और वक्ता के गुणों का वर्णन किया गया, कौन व्यक्ति कहने योग्य है और कौन व्यक्ति सुनने योग्य है। कहने योग्य वो व्यक्ति है जो कि परंपरागत अपने गुरु के आदेशों के अनुसार प्रचार कर रहा हो, अपने जीवन में उन नियमों का दृढ़ता से पालन कर रहा हो, वो व्यक्ति भागवत कथाओं को कहने योग्य है। कोई भी व्यक्ति व्यास आसन पर नहीं बैठ सकता। व्यास आसन पर बैठने का मतलब है हम श्रील व्यासदेव जिन्होंने भागवतम का लिखा, पूरा भागवतम जिसने लिखा, उनके रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि हैं। तो व्यासदेव इतने बड़े भक्त हैं जिनके घर में सुखदेव गोस्वामी पैदा हो रहे हैं। वो सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्त के पिता होने के नाते वो इस गद्दी पे बैठने योग्य हैं, हम योग्य नहीं हैं। लेकिन हम किस लिए योग्य बन जाते हैं? क्योंकि उस परंपरा में आने वाले गुरु आदेश देते हैं जाओ प्रचार करो, जाओ उस गद्दी पे बैठकर भागवत कथा बोलो। तो इसलिए इस पे बैठने से पहले इसको प्रणाम करना चाहिए। और जो लोग प्रणाम करते भी हैं वो प्रणाम हमको नहीं करते हैं, किसको करते हैं? इस गद्दी को, व्यास गद्दी को। इवन श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य थे, उन्होंने कहा आई एम नॉट केपेबल ऑफ बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्यासदेव, मैं हूं नहीं इस काबिल, लेकिन मेरे गुरु ने कहा भक्ति सिद्धांत महाराज ने तुम जाओ और पाश्चात्य देशों में प्रचार करो, इसलिए मैं इस गद्दी पर बैठकर बोल रहा हूं। तो ये मत समझिएगा कि भक्त गद्दी पे बैठकर बोलते हैं तो वो उच्च हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि वो अपने गुरु के निर्देशों का पालन करते हैं इसलिए वो उच्च हो जाते हैं, गद्दी में बैठने के कारण उच्च नहीं होते हैं। तो गद्दी को सम्मान करना चाहिए, वो व्यक्ति प्रवक्ता हो सकता है। और श्रोता, तो दो प्रकार के श्रोता, प्रवरा और अवरा, प्रवर और अवर। प्रवर वो है जो उत्तम श्रोता है और अवर वो है जो निम्न दर्जे के श्रोता है। तो प्रवर श्रोता और अवर श्रोता के बारे में, सोता नहीं जो सो जाता है, श्रोता, श्रोता मतलब जो ध्यान पूर्वक औषधि को कानों से ग्रहण करता है, श्रोता। सोता मतलब होता है वो जो सो जाता है। तो सोता की बात नहीं हो रही है और वक्ता की बात नहीं हो रही है। लोग सोचते हैं बड़ा वक्ता है यार, क्या वक्ता रहता है? वक्ता नहीं, वक्ता, बोलने वाला, कथाओं को बोलने वाला। और श्रोता मतलब जो सुनता है, और बाहर जो होते हैं वो होते हैं वक्ता, वो वक्ते रहते हैं, लोग सोते रहते हैं। वक्ता और सोता, वक्ता और श्रोता। तो श्रोता बनना है हमको। जैसे एक बार 4-5 मेंढक जंगल से निकल रहे थे और निकलते निकलते एक बहुत बड़ी सी खाई आई और उस खाई में 2 मेंढक गिर गए। तो बाकी के जो 4 मेंढक बाहर रह गए वो चिल्लाने लगे, अरे तुम तो मर गए, अब तो कूद ही नहीं पाओगे, बाहर ही नहीं निकल पाओगे, हम जाएं, तुम तो मर गए। और दोनों बेचारे बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे, एक कूदा फिर दूसरा कूदा, ऐसे दोनों कूद रहे लेकिन बाहर निकल नहीं पा रहे थे। लेकिन एक ने हताश होकर छोड़ दिया कूदना और अपने प्राणों की बलि दे दी। दूसरा लगा रहा, कूदा, और लोग बोलते रहे मत कूदो, मर जाओगे, हड्डियां टूट जाएंगी, मर जाओगे, मत कूदो। एक वो कूदता रहा और बाहर आ गया कुछ देर बाद। तो सब हैरान रह गए कि ये बाहर कैसे आ गया। तो उसने पता चला बाद में कि वो बाहर इसलिए आया क्योंकि वो कानों से बहरा था, उसको सुनाई नहीं दे रहा था। उसको लग रहा था ये सारे के सारे मुझे उत्साहित कर रहे हैं, बाहर आ जा। तो बेचारा जोर लगाता रहा और जो सुन पा रहा था वो सुन करके गिर गया। तो क्या सुने, किससे सुने, कैसे सुने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सूक्ष्म विषय है। कुछ भी नहीं सुनना चाहिए, कुछ भी सुनेंगे ना तो किसी भी रास्ते पर निकल जाएंगे। कहते हैं सारे रास्ते एक ही तरफ जाते हैं, बड़े बड़े फिलोसोफर बैठे हुए ऑफिसों के अंदर कंप्यूटर के आगे, सारे रास्ते एक ही तरफ जाते हैं। उनसे पूछो आप ऑफिस इसी रास्ते से क्यों आते हैं, आप भी किसी रास्ते से आ जाएगा। हाँ, चेन्नई की ट्रेन चेन्नई जाएगी, बॉम्बे की ट्रेन बॉम्बे जाएगी, ऐसे थोड़ी सारे रास्ते एक तरफ आते हैं, एक रास्ता एक ही तरफ जाता है। अगर MBBS डॉक्टर बनना है तो मेडिकल कॉलेज ही जाना पड़ेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करके कोई डॉक्टर नहीं बनता। अगर भक्त बनना है, अपने हृदय का शुद्धिकरण करना है, इस अविद्या के छालों को दूर करना है, तो एक ही रास्ता है श्रवणम कीर्तनम, भगवान की कथाओं को सुनना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। तो अब यहां पर चार प्रकार के प्रवर और चार प्रकार के अवर श्रोता बताए गए हैं। कहते हैं पद्म पुराण के अंदर, प्रवरा चातको हंसो शुको मीनादय तथा अवरा व्रक भूरंड वृष्टोदा प्रकृतितः। तो प्रवर और अवर, चार प्रकार के श्रोता जो उत्तम दर्जे के हैं और चार प्रकार के श्रोता जो अधम नीचे दर्जे के हैं। तो प्रथम दर्जे के उत्तम दर्जे के श्रोता वो हैं जो हैं प्रवरो चातको, चातक सुना आपने, चातक चिड़िया का नाम, चातक वो है जो पपीहा भी कहलाता है, पपीहा बोला जाता है, उसकी बड़ी मधुर वाणी होती है, लेकिन उसका एक गुण होता है कि वो पीता है तो क्या पीता है, बारिश का पानी, और कुछ नहीं पीता। पहली बारिश के पादल की बूंद जो जमीन पर ना गिरी हो उसको ग्रहण करता है। क्या चॉइस है उसकी, स्पेशल, ओनली लिसन प्रभुपाद कथा, ओनली लिसन इस्कॉन कथा, और कुछ नहीं सुनूंगा, एकदम स्पेसिफिक। वो पपीहा सिर्फ बारिश की बूंद को ही ग्रहण करता है जो मिट्टी में ना मिली हो, इतना चॉइस, इतना चुनाव उसका सूक्ष्म। एक बार एक चातक चिड़िया बैठी थी और एक शिकारी ने उसको तीर मार दिया, और अभी तक वो प्यासी थी, तो मरते वक्त उसको बहुत प्यास लग रही थी, अभी मर ही रही है और पानी पीना ही है। नदी के किनारे पेड़ था और पेड़ के ऊपर वो चातक चिड़िया बैठी थी और गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, और देखा कि मेरी चोंच जाकर पानी में डूबेगी, मेरे मुंह में पानी आएगा और मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। तो उसने क्या किया, अपनी चोंच को कस करके बंद कर लिया और अपने मुख को उल्टा कर लिया और फिर उल्टे जाकर अपने शरीर का त्याग किया। उसने कहा मर जाऊंगी लेकिन पानी और ग्रहण नहीं करूंगी, कुछ और नहीं पीऊंगी, पीऊंगी तो सिर्फ बादल का पानी। तो हमें भी इस प्रकार से दृढ़ होना चाहिए, ये नहीं 3 हफ्ते 4 हफ्ते कृष्ण कथा सुनी और फिर पता चला किसी और चीज ने हमको लालच दिया और फिर हम बस बह गए उसी लालच में। बहुत जल्दी हम हाथ हताश हो जाते, छोड़ देते हैं कृष्ण कथा का शरण, इसे कभी नहीं छोड़ना। अगर आप मंदिर नहीं आ सकते तो प्रभुपाद जी ने कहा श्रीमद् भागवतम गीता और उनकी पुस्तकें घर में आप ले जाइए, उनको पढ़िए, वो भी संग है श्रील प्रभुपाद जी का, कथा सुनना है। लेकिन अगर हो सके कोशिश करिए मंदिर आकर कथाओं को सुने, एटलीस्ट संडे के संडे, इतवार के इतवार इस कार्यक्रम में अवश्य आना चाहिए व्यक्ति को। परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज को जब श्रृंगी ऋषि ने, शमिक ऋषि के जो पुत्र थे, उन्होंने श्राप दिया 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी परीक्षित महाराज को बोला, तो परीक्षित महाराज के पास बहुत ऑप्शन थे, राजा थे पूरे विश्व के, नॉट ओनली इंडिया, पूरे वर्ल्ड के राजा, पूरी पूरे जितने भी कॉन्टिनेंट हैं सबके राजा परीक्षित, चाहते तो क्या कर सकते थे, जाकर श्रृंगी ऋषि को मार सकते थे, उन्होंने गर्भ में भगवान का दर्शन किया था, चाहते तो श्राप को कैंसिल कर सकते थे, या फिर घबराकर किसी भी सनातन धर्म मंदिर में घुस जाते और बोलते मृत्यु से बचने का उपाय बताइए। उन्होंने किया नहीं, उन्होंने कहा कि मैं सुनूंगा तो किसी श्रेष्ठ वक्ता से ही कथा को सुनूंगा, और वो ढूंढते रहे, ढूंढते रहे, ढूंढते रहे, ढूंढते ढूंढते वो शुकताल पहुंच गए जो हरिद्वार के पास, मुजफ्फरनगर के पास है, उस शुकताल पे गंगा नदी के किनारे जाकर उनको जब पता चला सुखदेव गोस्वामी जो वेद व्यास जी के पुत्र हैं, जो स्वयं भगवान कृष्ण का अवतार हैं, वो कथा करने वाले हैं, तब उन्होंने उनसे कथा सुनी। कैसे सुनी, 7 दिन 7 रात बिना पानी पिए हुए, हमारी तरह नहीं, 1 घंटे के बाद हमें फुल प्लेट प्रसाद चाहिए, कथा 10 मिनट लेट हो जाएगी तो पीछे से उठने लग जाते हैं लोग, चलो यार बहुत देर, कमर सीधी कर, बहुत बोलते हैं यहाँ के लोग, तो इट्स बहुत हो गया, इट्स ओके यार, ठीक है यार, ओके ठीक है, चलते हैं प्रसाद लेते हैं, घर में और काम है, मूवी आने वाली 4 बजे, चलते हैं, ओके यार ओके। तो बस खराब है चातक चिड़िया पपीहा, ये उत्तम दर्जे का श्रोता है। फिर दूसरा है प्रवर चातको हंसो, हंस, हंस कैसा होता है, पानी और दूध को अलग कर कर पीता है, पानी भी है और दूध भी है, उसको मिश्रित दे दो तो पानी पानी छोड़कर दूध दूध पी लेता है। अमेजिंग, कोई मशीनरी नहीं कर सकती। भगवान ने ऐसा क्रिएशन किया, एक क्रिएचर, एक ऐसा पक्षी बनाया जो दूध और पानी को अलग कर कर ग्रहण कर सकता है। तो ऐसे ही श्रोता होना चाहिए और ऐसा ही वक्ता होना चाहिए। तो वक्ता जब भागवत कथा का वर्णन करे तो श्रोता को पता होना चाहिए इसमें से क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य नहीं है। हाँ, जैसे वक्ता बोल रहा है भगवान कृष्ण की 16108 रानियां थी। श्रोता सुन रहा है, अच्छा तो मैं भी कृष्ण बनूंगा, 16000 से शादी करूंगा। और फिर बोलते भी हैं, तर्क करते हैं लोग, अजी आपके भगवान 16000 करें, हमने 4 कर ले तो कोई दिक्कत है क्या? अरे भाई आप तो उनको प्रश्न पूछना चाहिए, भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया तुम 5 किलो का उठा लो, कोई दिक्कत है क्या? तो बस वही उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, नहीं 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 पत्थर कैसे उठा सकते 7 दिन तक। हम पर भगवान का अगर हम इमिटेशन करना चाहते हैं, उनको देखकर करना चाहते हैं तो सारी चीजें करो ना। कहते हैं शराब पीने वाले, अजी हम तो शिव जी का महाप्रसाद ले रहे हैं, तो उन्होंने तो जहर पिया था, पियो आप भी, तब फिर सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। तो इसका मतलब हमें वही चीज ग्रहण करनी है जो हमें अपनाने के लिए हमारे भक्तों द्वारा हमें बताए गए हैं। भगवान का इमिटेशन नहीं करना है, नकल नहीं करनी उनकी, उनके बताए रास्ते भगवत गीता के उपदेशों को अपने जीवन में ग्रहण करना है। ये है हंस जैसा श्रोता। और दूसरा है, तीसरा है शुक। शुक मतलब तोता। तोता क्या खाता है? अमरूद। कौन से अमरूद खाता है? पके हुए, कुछ भी नहीं खाता, कच्चे में चोंच ही नहीं मारता। जिस अमरूद में चोंच लगी हो इसका मतलब है वो पका हुआ अमरूद था। मानते हैं कि नहीं? गलत बात है? सही बात है। तो सुखदेव गोस्वामी, शुक मतलब तोता और गोस्वामी मतलब जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में किया, ऐसे सुखदेव गोस्वामी कोई भी स्क्रिप्चर उठा सकते थे, पद्म पुराण या फिर स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, गरुण पुराण। उन्होंने कौन सा स्क्रिप्चर उठाया? भागवत पुराण। क्यों उठाया? क्योंकि जो शुक है, जो तोता है, तोते जैसा श्रोता है, वो वही चीजें पढ़ता है, वही चीजें बोलता है, वही चीजें सुनता है जो पकी हुई भक्ति को आगे बढ़ाती है। भागवतम कहता है निगम कल्पतरो गलितम फलम। तो ये कौन सा फल है? निगम कल्पतरो गलितम, पका हुआ फल है भागवतम। इसका श्रवण करना चाहिए व्यक्ति को। तो कैसे करें? क्योंकि जो तोता है उसकी बड़ी मधुर वाणी होती है, वो जैसा सुनता है वैसा ही बोलता भी है। तो हमें अथॉरिटी से सुनना चाहिए और फिर इसका प्रचार भी एज इट इज करना चाहिए, बीच में कोई चेंजेस नहीं करने चाहिए। श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य थे, उनसे एक बार पूछा गया कि प्रभुपाद जी आप विदेश आकर इतने भक्तों को आपने बनाया, अनेकों अनेकों भक्त बना दिए, क्या कारण है इसके पीछे? इतने भक्त आपके साथ जुड़ गए हैं और आप इतने लंबे लंबे प्रवचन देते हैं, इतने शास्त्र आप जानते हैं, इसका क्या मूल मंत्र है? प्रभुपाद जी ने कहा कि बस एक ही मूल मंत्र है, जब मेरे गुरुदेव बोलते थे तो मैं ध्यान पूर्वक श्रवण करता था, सुनता था। सुनना ही मेरी बोलने की योग्यता है। आई कैन स्पीक व्हेन आई कैन हेयर, मैं तभी बोल सकता हूं जब मैं सुन सकता हूं। अगर मुझ में सुनने की योग्यता नहीं है मैं कभी बोल भी नहीं पाऊंगा। तो इसलिए मैंने ध्यान पूर्वक सुना। भक्ति सिद्धांत महाराज ने एक बार 6 घंटे का क्लास दिया, 6 आवर क्लास। सारे भक्त उठकर चले गए, सिर्फ सबसे आगे कौन बैठे थे? अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। 6 आवर्स तक सुना अपने गुरुदेव को। जब उनके गुरुदेव ने पूछा प्रभुपाद से, अभय तुम्हें क्या समझ में आया, तो उन्होंने आंखों में आंसू लाकर गुरुदेव को हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा फिर तुम बैठे क्यों थे? बोले क्यों, क्योंकि मुझे लग रहा था आप जो बोल रहे हैं वो मेरी समझ में आने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे लिए बहुत जरूरी है। ऐसा कोई व्यक्ति बोलने वाला और ऐसा सुनने वाला। सब उठकर चले गए और फिर क्या हुआ? भक्ति सिद्धांत महाराज ने 10,000 शिष्य बनाए अपने जीवन में, कईयों को विदेश भी भेजा, लेकिन मात्र एक अभय चरणारविंद पूरे विश्व को बदल पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने गुरुदेव को पूरा सुना, सुनते रहते थे अपने गुरुदेव को। बस ये व्यक्ति की क्वालिटीज है। तो हमें इस तरह से होना चाहिए। हाँ, लोग बोलते हैं कि प्रभुपाद जी ने इतने लोगों को इन्फ्लुएंस किया, इतना सब कुछ हुआ, इसके कारण वही था कि उन्होंने अपने गुरुदेव को एज इट इज सुना। और चौथे प्रकार के श्रोता हैं मीन, मछली। मीन राशि होती है ना, मीन फिश, मछली। मीन कैसी होती है कि पानी में ही रहती है, और क्षीर सागर जो है दूध का सागर जो है, मिल्की वे गैलेक्सी, उसमें जो मछलियां रहती हैं वो सिर्फ दूध ही पीती हैं, वो पानी नहीं पीती हैं, और जो मछलियां यहां होती हैं वो सिर्फ पानी पीती हैं, दूध नहीं पीती हैं। और जब वो पानी में रहती है तो इमर्ज्ड, एब्जॉर्ब्ड, उसी में घुसी होती है पूरी, वो बाहर के बारे में सोच ही नहीं रही होती है क्या चल रहा है विश्व में, बाहर क्या चल रहा है। जैसे अभी यहां जितने भक्त बैठे हैं, अगर हम मीन दर्जे के, मीन मेंटेलिटी वाले नहीं, मीन मतलब मछली वाले दर्जे के श्रोता हो, तो हम सोचेंगे नहीं बाहर मेरी चप्पल रखी है, बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, प्रसाद कितनी देर में होगा, घर में बच्चों का क्या होगा, ये सब जो सोच रहा है वो मीन कैटेगरी का श्रोता नहीं है, मछली जैसा नहीं है, एब्जॉर्ब पूरा एकदम उसी के अंदर। ऐसा जो वक्त, ऐसा जो श्रोता होता है वो बीच बीच में प्रश्न नहीं पूछता, प्रभु जी ये बात समझ में नहीं आ रही, एक्सक्यूज मी हरि बोल, एक मिनट पहले मैं बोलूं, सुनता है वो एज इट इज, समझ में नहीं आता तो उसके बाद जब पूछा जाए बोलिए प्रश्न बोलिए, तब वो प्रश्न पूछता है, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं करता। ऐसा व्यक्ति मीन मछली जैसा श्रोता होता है, एब्जॉर्ब पूरा का पूरा। जिसका उदाहरण आता है राजा कुलशेखर, राजा कुलशेखर जब कलयुग शुरू हुआ तो उसके 150 वर्ष बाद उनकी, उनको पैदा होते हैं, त्रिवेंद्रम एक शहर है तमिलनाडु के अंदर, केरला के अंदर, तो केरला में त्रिवेंद्रम में राजा कुलशेखर का जन्म होता है। और वो एक अलवर बताया गया, जैसे हमारे गोस्वामी होते हैं षट गोस्वामी, ऐसे वो अलवर थे, कुलशेखर अलवर। अलवर मतलब जो भगवान के सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए जन्म लेते हैं, ऐसे 12 अलवर श्री संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय में जन्म लेते हैं, और उसमें से एक थे कुलशेखर अलवर। ये जो अलवर है भगवान के विष्णु चक्र, शंख, पद्म, गदा, इनका इनकार्नेशन, इनका अवतार होते हैं। तो ये जो राजा कुलशेखर अलवर थे, इन्होंने एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा, जैसे प्रभुपाद जी अपने हृदय में लगा के रखते थे। बता सकते हैं कौन सा ग्रंथ था कोई? एनीबडी? राजा कुलशेखर ने ग्रंथ लिखा जिसे प्रभुपाद ने स्कॉन में एस्टैब्लिश किया, कौन सा ग्रंथ है? हाँ जी, हरि बोल, मुकुंद माला स्रोत। हाँ, मुकुंद माला स्रोत प्रभु जी के लिए, हरि बोल। तो मुकुंद माला स्रोत जो है वो उसमें बोला गया कृष्ण तद्विया पद पंकज, उसमें बता रहे हैं बहुत सुंदर तरीके से कि मेरा हृदय जो कृष्ण है वो कहां जाए, आपके जो ये हंस रूपी मेरा जो शरीर है, ये जो कमल रूपी, जो कमल निकला हुआ है कीचड़ में, उसकी जो नाल है उसमें फंस चुका है इस संसार में, और कभी भी मेरे प्राण निकल सकते हैं, तो कृष्ण मुझे क्या चाहिए, आपके चरण चाहिए ऐसे वक्त में, कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं और फिर मैं आपके नामों का स्मरण या श्रवण ही ना कर पाऊं। तो इसलिए इस प्रकार के जो राजा कुलशेखर थे, जब कथा सुनते थे तो उनके राज्य में रामचंद्र जी की कथाएं चलती थी, क्योंकि श्री संप्रदाय के वैष्णव थे, श्री संप्रदाय, तो वो इतनी कथा में इमर्स, एब्जॉर्ब, इतना घुस जाते थे, इतने विलीन हो जाते थे कि कथा सुनते सुनते अगर ये प्रसंग आता था कि सीता महारानी को रावण उठा के ले गया है, तो अपनी तलवार निकाल लेते थे और बोलते थे जय श्री राम, कहां है रावण, कहां है रावण, ऐसे बोलने लगते थे। तो उनके एक जो गुरुदेव थे, उनके जो कथा वाचक थे, उन लोगों को सेनापति ने कहा देखो भाई, जब आप कथा प्रवचन करो तो अयोध्या के उत्सवों का वर्णन करो, लेकिन रामचंद्र जी की सीता महारानी के अपहरण की कथा मत बताओ। बताते ही इनको क्या होता है, अष्ट सात्विक विकार प्रकट होते हैं, और ये अपने अपने इतने विलीन होते हैं, ये अपने आप को सोचते हैं कि मैं उसी कथा का एक हिस्सा हूं, और ये चल पड़ते हैं। तो सबने मना कर दिया, रोज कथाएं होती श्रोता उसमें श्रवण उत्सव की कथाएं होती और बहुत उत्सव मनाए जाते हैं। एक दिन कथावाचक छुट्टी पे था तो कोई और कथावाचक आ गया, जब दूसरा कथावाचक आया तो उसने अनजाने में क्या बोल दिया, सीता महारानी का रावण ने अपहरण कर लिया। अभी तो बहुत दिनों बाद सुना था, तो आज तो इतने विलीनता से सुन रहे थे, और अब सब सोचने लग गया बस अब तो हो गया काम। उन्होंने कहा रथ कहाँ है, रथ निकालो, मेरा मेरी तलवार कहाँ है, निकालो, रावण जय श्री राम, और त्रिवेंद्रम से रामेश्वरम की तरफ चल दिए, और चलते 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 सुन ही नहीं रहे, पीछे सेना भी पुकारी रुक जाइए राजा, रुक जाइए कुलशेखर, वो जा रहे जा रहे जा रहे, और जाते जाते समुद्र में एंटर कर गए, और समुद्र में आधे पानी में कमर तक पूरे चले गए, गर्दन तक पानी में चले गए, बस अब कभी भी अपने शरीर को छोड़ सकते हैं पानी के अंदर। तो सारे लोग घबरा गए कि अब क्या होगा, तो सुन ही नहीं रहे। तभी क्या हुआ, वो बार बार क्या बोलते जा रहे थे, जय श्री राम, क्या बोल रहे थे,
जय श्री राम।
तो क्या होगा, जब भगवान के नामों को पुकारते हैं तो कौन आते हैं, राक्षस आते हैं, भगवान आते हैं, भगवान वहां प्रकट हो गए। अभी त्रेता युग में रामचंद्र जी की कथा हुई थी, उसके बाद द्वापर युग निकल गया, फिर कलयुग चल रहा है, उस कलयुग में, इस कलयुग में जिसमें हम भी हैं, उसके अंदर राजा कुलशेखर को रामचंद्र जी पीछे से आते कहते हैं, हरि बोल, रुको तो रुक जाते एकदम, भगवान ने रोक दिया उनको, स्टेबल एकदम, और पूरा शरीर कांप रहा है उनका, और उनको टर्न करते हैं, उनको घुमाते हैं और देखते हैं भगवान राम, और उनको गले लगाते हैं और दोनों रोने लग जाते हैं, एक दूसरे को गले लगा रखा है उन्होंने, और भगवान देख रहे हैं और कह रहे हैं क्या हो गया कुलशेखर तुमको, मैं हूं ना, मैं रावण का वध कर सकता हूं, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, तुम जाओ और अपने राज्य का वहन करो, अपने राज्य को सेवा करो। तो फिर ऐसे भक्त को भगवान के दर्शन होते हैं, कैसे भक्त को, जो मीन तरह से एब्जॉर्ब होकर कथाओं को सुनता है। इवन जनक महाराज, सीता मैया के पिताजी जनक, जनक इस तरह से कथाओं को सुनते थे कि घर भा जाए भाड़ में, मैं तो कथा में हूं जी, अभी कथा के वक्त और कुछ नहीं सुन सकता। तो वहां के जो कथावाचक थे वो देखते थे राजा आते हैं, मुकुट कवच तलवार रथ पे से उतरते हैं, कथा में आके बैठते हैं और फिर कथा शुरू होती है। तो जो संत थे जिनके पास कुछ नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है, बहुत बड़े महल नहीं है, जनक महल नहीं है, वो भी आके बैठते थे। तो एक दिन कथावाचक जो थे वो आकर बैठ गए और कीर्तन करते रहे, राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम सीताराम, लेकिन बोल नहीं रहे कुछ। तो जो संत थे वो बोलने लगे, अरे कथा का टाइम जा रहा है भाई, जल्दी शुरू करो। तो जो कथावाचक थे वो बोले, मैं इंतजार कर रहा हूं मेरे उत्तम भक्त का। अरे उत्तम भक्त कौन है, कह रहे जनक महाराज। कह रहे जनक कैसे उत्तम भक्त हो गए, वो तो एक विषयी व्यक्ति है, राजा है माना, इतना सारा पैसे में लिप्त है, प्रॉपर्टी में रहता है, ऊपर इतने कपड़े पहनता है, रथ चाहिए, महल चाहिए, हम लोग साधु कुटिया में रहने वाले, हम उत्तम भक्त हुए या वो उत्तम भक्त हुआ। तो जब इस प्रकार से बोला तो कथावाचक ने कहा, वक्त आने पर आपको मालूम पड़ेगा, पर आज मैं कथा तभी सुनाऊंगा जब जनक जी आएंगे। थोड़ी देर बाद जनक जी पहुंच गए और कथा शुरू हुई। कथा जब शुरू हुई तो इतने में जो कथावाचक थे उनका एक शिष्य था, उन्होंने उस शिष्य को कहा हरि बोल, इशारा कर दिया। वो आया दौड़ा दौड़ा और आकर कहने लगा, जनक महाराज, जनक महाराज, आपके महल में आग लग गई है, पूरा राजकोष जल गया है, अब उसमें राख ही राख बची है, चलिए जल्दी, सब आपको पुकार रहे हैं। अभी कथा के एक घंटा बाकी था तो जनक महाराज वहीं बैठे रहे, उन्होंने ऐसे करके देखा और देखने में देखा वहां जनक महल से अग्नि निकल रही है। भी कथावाचक बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने वहां अग्नि प्रकट कर दी और पूरी कथा के बीच में दिख रहा है कि घर जल रहा है मेरा, वो बैठे हुए हैं, कह रहे रामचंद्र जी की कथा सुने बिगैर मैं उठूंगा नहीं यहां से, जब तक विराम नहीं देंगे, लेक्चर समाप्त नहीं होगा, कोई प्रसाद के लिए नहीं जाएंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे एकदम स्टिक। तो ऐसे करके बैठे रहे। अब जब वो वापस गए तब जाकर देखा महल एज इट इज था, क्योंकि जब जिस राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के, जिसको कृष्ण रक्षा करना चाहते हैं उसको कौन मार सकता है, और जिसको कृष्ण मारना चाहते हैं उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। तो महल एज इट इज वैसा का वैसा महल था, उसमें कोई बदलाव नहीं आया, सब कुछ वैसे ही था। दूसरे दिन कथा चल रही थी, जनक महाराज टाइम से पहले पहुंच गए गिल्टी कॉन्शियस होकर, वक्ता के आने से पहले श्रोताओं को आना चाहिए, तो सब आकर बैठ गए और फिर कथा शुरू हुई। फिर इधर आज फिर गुरुजी ने इशारा किया अपने शिष्यों को, तो शिष्य चिल्लाने लगे संत संत। तो बहुत सारे संत जो आगे बैठे सबने देखा, हाँ मैं ही तो संत हूं, सब अपने आप को संत मानते हैं ना, संत संत। सबने पलट के देखा, हाँ आपकी कुटियाओं में आग लग गई है, आपके जो थे गमछे लंगोटी सब कुछ जल रहा है, डंडे जल रहे हैं। सब बोले अच्छा, तुरंत कथा छोड़ छोड़ के भाग गए, कुछ था नहीं, बस कुटिया घास फूस की और एक गमछा और एक लंगोटी कमंडल और डंडा, इसको बचाने के लिए भाग गए, अगर जल गया तो कहां से मिलेगा दोबारा, हम कोई राजा जनक की तरह थोड़ी है, पैसे वाले कहीं और से आ जाएगा, हमारी तो रिश्तेदारी भी दशरथ के साथ नहीं है, तो वो तो भाग गए सारे के सारे। जब वापस आए तो देखा वहां पर कुछ नहीं था, ना कोई आग थी ना कुछ था। तब कथावाचक ने कहा, अब समझे आप लोग कि कौन है, जनक श्रेष्ठ श्रोता है या संत श्रेष्ठ होता है। तिलक लगाने से या शरीर के वस्त्र बदलने से कुछ नहीं होता, किसकी चेतना कृष्ण कथा के लिए समर्पित है ये इंपॉर्टेंट श्रोता है, वरना आधे तरह लोग सोता है, सो जाते हैं, ठीक सोना नहीं है, कथा सुननी है, हरे कृष्ण। तो फिर अब अवर जो श्रोता है, बैड लिसनर्स, उनके बारे में वर्णन कर रहे हैं। श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश की जय, जगन्नाथ बलदेव सुधर महाराणी गौर नेता है, पतित पावन श्रील प्रभुपाद जी की जय। तो यहां पर अवर श्रोता बताए गए हैं, अवर श्रोता भी चार प्रकार के हैं। पहले हैं व्रक, व्रक मतलब भेड़िया, भेड़िया जैसे जो श्रोता होते हैं, वो भेड़िया क्या करता है, जब जंगल के अंदर बांसुरी की ध्वनि चल रही होती थी कृष्ण की, हाँ कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि चल रही है और सारे के सारे विलीन है उसमें, तो बीच में शोर मचा देगा, तो ऐसे ही सब अपने साथ एक एक भेड़िया लेके घूम रहे हैं मोबाइल फोन, कथा चल रही है बीच में, म्यूजिक चलता है और लोग बड़े खुशी से फोन निकालते भी है, कथा के भाड़ में पहले बात कर लू मैं, हाँ जी बेटा आ जाओ आ जाओ प्रसाद होने वाला है बस थोड़ी देर आओ। तो ऐसे नहीं, कथा के बीच में फोन मतलब बंद, पूरा स्विच ऑफ, कथा मतलब कृष्ण और भगवान स्वयं दर्शन दे रहे हैं, उसमें हम कैसे सोच सकते हैं किसी और चीज के बारे में, नथिंग एल्स ओनली कृष्णा। तो ये है व्रक भेड़िया जैसे जो श्रोता है, बुरा मत मानेगा आप लोग तो अच्छे हैं, अवर श्रेणी में आते हैं, लेकिन प्रवर भी हमें प्रवर श्रेणी में आते हैं लेकिन हमें अवर भी मालूम होने चाहिए। जैसे एक बार एक राजा थे, उनका बेटा बंदरों के साथ में और भेड़ों के साथ में, भेड़ होती है ना जिसके शरीर पे ऊन होती है वूल, उसके साथ खेला करता था। तो वहां एक बुजुर्ग बंदर था, उस बुजुर्ग बंदर ने कहा तुम ये जो है ना राजा के बेटे के साथ खेलना छोड़ दो इसके साथ खेलना। तुमने कहा क्यों? तो बुजुर्ग बोला बंदर कि देखो मुझे ऐसा लगता है कि जब बंदर राजा का बेटा और भेड़ इस साथ में खेलते हैं ना तो भेड़ें इतनी ज्यादा शैतान है कि वो राजा की रसोई में प्रवेश कर जाती हैं और रसोई में जाकर जो बर्तन है भोग लगने वाले उनको अपवित्र कर देती है और किसी दिन और वहां के जो रसोईया है वो जलती हुई लकड़ी निकालते हैं और मारते हैं भेड़ को, तो अब कभी तो ये बच के आ जाती है, लेकिन किसी दिन इसके शरीर ने अग्नि पकड़ ली, आग पकड़ ली तो पूरे शरीर में आग लगेगी तो वो बुझाने के लिए कहां जाएगी? तो वो जाएगी घास के ढेर में। घास का ढेर कहां है? घास का ढेर है अस्तबल में। अस्तबल के अंदर जब जाएगी तो अस्तबल में आग लग जाएगी। जब अस्तबल में आग लग जाएगी तो घोड़े जलने लगेंगे। घोड़े जलेंगे तो फिर पानी से घोड़ों की आग बुझाई जाएगी। जब घोड़ों की आग बुझेगी तो फिर राजा परेशान हो जाएगा। राजा परेशान होगा कि मेरे शाही घोड़े जल गए, और फिर उनके घाव को भरने के लिए वैद्य को बुलाएगा, और वैद्य जब आएगा तो कहेगा बंदरों की चर्बी निकाली जाए और उससे घोड़ों का घाव ठीक होगा। तो फिर जब बंदरों की चर्बी निकालने का नंबर आएगा तो कौन पकड़े जाएंगे? हम लोग ही तो पकड़े जाएंगे। उसने आगे की दृष्टि दिखाई तो सारे बंदर बोले कुछ नहीं होता, ये सब तो फालतू बातें हैं, कुछ नहीं होता। ऐसे हम यहां पर आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप लोग माया में फंस जाएंगे, टीवी फिल्म सुनेंगे तो फंस जाएंगे, कृष्ण कथा को सुनिए फिर ऐसा होगा, फिर नरक ले जाएंगे, फिर दंडे पिरेंगे, फिर ऐसा होगा, फिर शरीर बदलेगा, फिर जानवर की योनि में आएंगे। ऐसे बकवास है, कुछ नहीं होता, मानते नहीं कोई। तो जो बुजुर्ग बंदर था उसको कई बार बोलता था लेकिन कोई सुनता नहीं था उसके बात को। लेकिन एक दिन क्या हुआ, सच में रसोईया को जब डंडे से मारा, रसोईया ने भेड़ को, तो भेड़ ने आग पकड़ी तो सीधा दौड़कर अस्तबल में गई, पूरे अस्तबल में आग लग गई, घोड़े जले और घोड़ों के जलने से जो घाव हुए, राजा ने वैद्य को बुलाया तो बोला बंदरों को पकड़ो सारे और उनकी चर्बी निकालो और चर्बी निकालकर घोड़ों के घाव को भरो। वैसा ही हुआ और घोड़े के घाव भरे गए और उसके बाद घोड़े ठीक हो गए। बंदर क्योंकि उतने यूजफुल नहीं थे जितने घोड़े यूजफुल थे, शाही घोड़े महंगे घोड़े लड़ाई में काम आते थे, तो बंदरों की बलि चढ़ा दी राजा ने। और बुजुर्ग बंदर पहले भाग गया था, तब उसने खबर सुनी तो उसको बहुत दुख हुआ। मैं तो कहता था संडे आफ्टरनून लेक्चर में जब आते थे तो मैं तो बोलता था मान जाओ प्रभु जी लालच छोड़ दो, मान जाओ प्रभु जी क्लास में आ जाओ, मान जाओ प्रभु जी संडे लफ्फी आया करो, आश्रय आया करो प्रभु जी, लेकिन आए नहीं फिर बाद में पछताएंगे। तो इसलिए बुजुर्ग बूढ़ा बंदर तो बोलेगा लेकिन बाकियों को भी सोचना चाहिए कि इसी तरह से जो भेड़िया जैसा जो भक्त होगा व्रक वो नहीं समझेगा। आप लोग तो समझदार हैं इसलिए आते हैं, लेकिन जो समझदार नहीं है वो तो चले जाते हैं, आते नहीं है क्लास। हाँ, तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि हम भी किसी दिन पकड़े जाएंगे बंदरों की तरह। बंदर पकड़े जैसे जाते हैं पता है, एक पतली सी एक वो लगाते हैं शीश कांच की नली और उसके अंदर नीचे गोल घेरा होता है, उसमें केले मूंगफलियां डाली जाती हैं और बंदर आता है और बंदर पकड़ने के लिए उस नाली के अंदर हाथ डालता है और केले को पकड़ लेता है और केला पकड़कर जब बाहर निकलता है तो हाथ फंस जाता है। अब वो निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं सकता, तो निकलने का आसान तरीका क्या है, केले को छोड़ दो, अब हाथ जैसे गया वैसे आ जाएगा। लेकिन बंदर इतना ज्यादा फंस जाता है उसके रस में कि छोड़ता नहीं है और पीछे से आकर तीन चेन में बंदर को बांध लिया जाता है और उसके बाद मदारी डग 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 और नाचता रहता है। तो हमारे साथ भी वही होगा, जब हमें भगवान ने भेजा तो हमें यहाँ पर माया दिखाई देती है, वाह गाड़ी बंगला पैसा पकड़ लेते हैं। भक्त बोलते हैं छोड़ दीजिए प्रभु जी छोड़ दीजिए, टाइम नहीं है प्रभु जी, बिजी है, छोड़ नहीं सकते। जिस दिन छोड़ देंगे आसानी से बाहर आ जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे तो तीन बंधन सतोगुण रजोगुण तमोगुण बांध देंगे और माया मदारी डग 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 नाच बेटा। अब चल ऑफिस, चल ओवर टाइम कर, चल अब नौकरी चेंज कर, चल अब हॉस्पिटल जा, टक डक 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 वो नचाएगी अपने पूरे में, नाचेंगे, नाच रहे हैं माया के इच्छा अनुसार, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी। तो अगर हम भी नहीं पकड़ने चाहते कि हम माया के वश में आए तो कृष्ण कथा को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। और दूसरी कैटेगरी का श्रोता होता है वृष। वृष मतलब बैल। बैल कैसा होता है, सुनता तो सब कुछ है लेकिन उसके बाद उसको समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है। तो जैसे धृतराष्ट्र थे, उन्होंने विदुर की कथा भी सुनी, कृष्ण कथा, और शकुनी के षड्यंत्र भी सुने, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया कि मैं एक्ट किस पर करूं, एक्शन प्लान क्या लूं, करूं क्या, कृष्ण कथा पे चलूं या फिर धृतराष्ट्र शकुनी के कहे पर चलूं। तो ऑब्वियसली माया के घेरे में था तो शकुनी के कहने पर चलने लगा। तो हम भी माया के घेरे में ही है, हम जब तक कृष्ण कथा या भक्तों के कहे में नहीं चलेंगे आसानी से स्लिप हो जाएंगे, निकल जाएंगे माया के घेरे के अंदर। तो इट्स बेटर कि हम उसको त्याग दें। हाँ। और फिर एक कैटेगरी होती है भूरन। भूरन मतलब जो हिमालय का एक पक्षी होता है, वो वैसे सब कुछ सुनता है और बोलता भी है लेकिन अपनाता कुछ भी नहीं है। जो सुनता है वो बोलता भी है लेकिन अपनाता कुछ भी नहीं है। जैसे ये जो बंदर थे, ये भी जाकर राजा के बेटे को कथा सुनाते थे, बोलते थे राजा राजा पता है हमारे जो दादाजी हैं बुजुर्ग बंदर, वो कहते हैं ऐसे हम मारे जाएंगे। तो वो बोलते थे लेकिन अपनाते नहीं थे और फिर एक दिन मारे गए। तो ऐसे हमें भूरण जैसा पक्षी भी नहीं बनना जो हिमालय में रहता है, बोलता तो ऐसे चीज है लेकिन अपनाता 0% है। तो अपनाने के लिए कुछ कुछ प्रयास करने चाहिए। और फिर चौथी कैटेगरी है ऊंट। ऊंट जैसा भक्त जो होता है श्रोता, वो क्या करता है, मधुर स्वादिष्ट आम के जैसे रस को छोड़ करके नीम के पत्तों को चखता है। कभी देखा आपने ऊंट को, वो आम के वृक्ष होते हैं ना, वो आम नहीं चबाता रसीले, नीम के पत्ते कड़वे कड़वे चबाता है। और फिर नीम से भी जब थक जाता है तो कीकर कांटों के पेड़ में जाता है, कांटे चबाता है, और कांटे चबाने से उसके मुंह में खून निकलता है, और खून निकलने से क्या सोचता है, वाओ व्हाट अ फ्रूट, जूसी फ्रूट, कितना रस है इसके अंदर, इतना खून निकलता है, अपने खून को सोचता है जूस निकल रहा है। तो हम भी इसी संसार की कथाओं को सुनकर, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, पता है मंदिर में क्या चल, प्रभु जी आपको तो पता ही नहीं कहाँ रहते हो आप, कृष्ण कथा में डूबे रहते हो, आओ बाहर निकल के कांटे खाओ आप भी। हाँ, कांटे को खाने से आपको जो रस मिलेगा वो वहां थोड़ी मिलेगा, ऊंट है वो व्यक्ति। तो इस तरह से वर्णन हुआ है प्रवर और अवर कैटेगरी के भक्तों के बारे में वर्णन किया गया है। तो हमारे पास भी चुनाव है, हम क्या बनना चाहते हैं, प्रवर या अवर। देखिए जैसे मेले में जाते हैं ना, तो मेले के अंदर घंटी बजती है, टंग, गेम होता है, उसके बाद बोलते जाइए जो जो चाहिए उठा लो, 10 रुपए टिकट के अंदर, तो 1 रुपए की चॉकलेट, 2 रुपए की टोपी, 1 रुपए का ये, 2 रुपए का ये, फिर दूसरी बेल बजती है, टंग, फिर बाहर आ जाता है। फिर उसके पेरेंट्स पूछते हैं माँ बाप, बेटा क्या क्या उठाया आपने बच्चे 1 मिनट के अंदर, मैंने टोपी उठाई, चॉकलेट उठाई, रिंग उठाई, फ्रूटी उठाई, मैंने ये उठाया, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। वैसे हमारे पास पहली घंटी बजती है, टंग, जन्म हो गया। अब वेट कर रहे हैं हमारे माँ बाप भगवान कृष्ण और राधा रानी रुक्मणी द्वारकाधीश, अभी क्या क्या चुनेगा। तो हम चुनते हैं क्या, बंगला, गाड़ी, परिवार, सैलरी, नौकरी। कृष्ण कथा ऐसे रखी रह जाती है, ड्राई होती, सूख जाती है पूरी, कभी जाते नहीं उसकी तरफ, मुड़कर देखते नहीं एक बार। तो चुनाव हमारे पास है, अवर या प्रवर, अच्छे भक्त या बुरे भक्त, उत्तम श्रेणी के श्रोता या अधम श्रेणी के श्रोता। दबी भी दूसरी घंटी बज सकती है, क्रंग, मृत्यु, बस अब चुनाव खत्म, अब बाहर आ गए ना, अब टिकट समाप्त, अब दोबारा टिकट लो, फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी, तब चुनाव कर सकते हैं। तो क्यों दूसरी घंटी का वेट करें, क्यों नहीं आज ही चुनाव करें कि हम उत्तम दर्जे के भक्त बनेंगे। जैसे एक बार एक राम कथा प्रवचन करने वाले व्यक्ति थे, वो रामचंद्र जी की बहुत सुंदर सुंदर कथाओं का प्रवचन करते थे। तो जो राजा था वो कथाओं में बड़ा लीन हो जाता था, जैसे कुलशेखर महाराज लीन हो जाते थे। तो एक दिन उसकी बड़ी इच्छा हुई कि आज राम कथा सुनी जाए, तो उसने वहां भेजा कि जाओ रमणी राम कथा करने वाले जो उनको बुला के लाओ। तो जब सैनिक आए राम कथा करने के लिए रमणी को बुलाने, तो देखा उसके 2 भाई हैं राम कथा वाचक के, लेकिन कथा वाचक तो कहीं बाहर शहर गया हुआ है। तो उन्होंने कहा भाई तुम भी तो कथा सुनते हो रोज राम कथा, तो कुछ तुम भी बोल सकते हो, चलो चलो हमारे साथ कथा करने के लिए। तो बेचारे आ गए दोनों, अब बड़ी टेंशन में थे, बोले हम कथा तो रोज सुनते थे लेकिन अंदर कुछ नहीं जाती थी, ना हमको एक रुपए का पता है रामचंद्र जी कौन थे, ना पिताजी का पता कौन थे, ना रावण का पता कौन थे, सुनते तो थे भैया इन शब्दों का प्रयोग करते थे लेकिन इनमें रिलेशन क्या, रावण राम का भाई था या लक्ष्मण था हमें मालूम नहीं है। तो बड़े डिप्रेशन में रहते थे। अब ये दोनों घबरा गए, राजा बोला कथा वाले आ गए, बोले हाँ ठीक है गेस्ट हाउस में रुकवा दो अतिथि गृह में, तो अतिथि गृह में रुक गए दोनों। अब दोनों एक दूसरे से घबरा रहे हैं, राजा के सामने क्या बोलेंगे, कथा बोलेगा बोलो बोलो, तुम तो राम कथा वाचक के भाई हो बोलो बोलो, तो क्या बोलेंगे हम, तो सोच में पड़ गए। जैसे मान लीजिए जो हमारे आश्रय क्लास में भक्त आते हैं उनसे बोला जाए आप कथा करिए, आप तो प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के साथ रहते कुछ तो कथा सुनाइए, है कुछ सुनते तो थे लेकिन याद कुछ नहीं आ रहा है, तो फिर फंस जाएंगे हम। तो ऐसे वो भी फंस गए बेचारे। अब फंस गए तो उनसे बोला बोलो बोलो, सैनिक बोले तैयार हो जाओ जल्दी कथा का टाइम होने वाला है। तो बोलता है पहला वाला जो पूर्वी देश है ना उत्तर भारत उधर के रहने वाले थे, तो बोलने लग गए राजवा पूछी हो तो कहा कही हो, राजा पूछेगा तो क्या कहेंगे। तो दूसरा बोलता है जो तोर गति सो मोर गति, जो तेरी गति होगी वो मेरी गति होगी। तो बेचारे बड़े घबराते बार बार पूछ रहे थे दूसरे से राजा पूछी हो तो क्या कही हो, राजा पूछेगा तो क्या बोलेंगे। दूसरा बोलता है जो तोर गति सो मोर गति, जो तेरी गति वो मेरी। अब बड़े डिप्रेशन में थे। तो सैनिक ने सुन लिया, लग रहा है ये तो रो रहे हैं कथा करने की बजाय, जाकर राजा को बोला राजा साहब ये दोनों जो राम कथा वाचक रमणी है ना ये तो डुप्लीकेट है, ये कुछ नहीं जानते हैं, रो रहे हैं कह रहे राजा पूछेगा तो क्या बोलेंगे ऐसे जो तेरी गति वो मेरी गति। राजा ने कहा अच्छा उठाओ दोनों को कारागार में डाल दो। राजा ने कारागार में डाल दिया। अब जब कारागार में चले गए जेल में बेड़ियां पड़ गई, अब बेचारे रो रहे थे, पहले ही पता था राजा पूछिए तो क्या कहियो क्या कहेंगे, फंस गए देख लो हमें कुछ नहीं आता था। तब उनका भाई वापिस आया कथा करके, तो बोला मेरे भाई कहाँ गए दोनों भाई नजर नहीं आ रहे। तो उन्होंने कहा आपके भाइयों को राजा ने कथा के लिए बुलाया था और उन्होंने कथा नहीं सुनाई इसलिए कारागार में डाल दिया। तो राम कथा वाचक जो था भाई वो आया बुद्धिमान, जैसे आप फंस जाएं तो फिर बोलेंगे प्रभु जी आइए फंस गए हम तो यहाँ पे, तो आया और आकर बोलने लगा कि क्या बात है राजा आपने मेरे भाई को कारागार में क्यों डाला। बोले अरे वो कुछ जानते नहीं रामचंद्र जी के बारे में, रावण को राम का भाई बता रहे थे, कुछ भी जानते नहीं थे, फिर मैंने बोला कि सुनाओ तो कहते राजा पूछी हो तो क्या कही हो, राजा को इस तरह बदनाम कर रहे थे। तो उन्होंने कहा अच्छा तो ये तो राम कथा ही कर रहे थे ना, फिर आपने उनको जेल में क्यों डाला, कह रहे इसमें राम कथा कहां से आ गई, कह रहे और क्या ये तो राम कथा ही तो थी, हे राम कथा में कहां बोला गया कि राजा पूछे हो तो कहा कही हो। बोले बोला गया कि नहीं बोला गया, मैं तो रोज प्रसंग करता हूं आप राजा सुनते हैं याद नहीं रखते, मुझे तो याद है कहां है बताओ। तो वो बोलने लगा कि देखिए जब सुमंत जी ने अपने सारथी के साथ दशरथ महाराज के कहने पर रामचंद्र जी को गंगा नदी के तट पर छोड़ा और रामचंद्र जी ने कहा कि अब मैं वापस जाना चाहता हूं, अब तुम वापस चले जाओ अयोध्या और मैं चला जाऊंगा वनवास, तो सुमंत जी सोचने लगे अब तो रामचंद्र जी मेरे कहे अनुसार वापस नहीं जा रहे हैं, जब मैं वापस जाऊंगा तो दशरथ जो राजा है वो पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगा, राजवा पूछी हो तो क्या कही हो। सच बात है। तो राजा बोला अच्छा ये बात तो मैंने सोची नहीं, तो कथा बोल रहे थे लेकिन सोर गति तो मोर गति तो रामायण में कहीं नहीं आता, मुझे अच्छे से याद है ये तो कहीं भी नहीं आता। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आता है ना राजा, आता है कहाँ आता है। तो उन्होंने कहा जब सुग्रीव जी से रामचंद्र जी वनवास अरण्य कारण वनों में मिलते हैं और पूछते हैं आप कैसे हैं सुग्रीव, तो सुग्रीव क्या कहते हैं जो तोर गति सो मोर गति, आपके भाई ने लक्ष्मण और भरत ने आपको वनवास दिलाया और मेरे भाई बाली ने मुझको घर से बाहर निकाल दिया, जो तोर गति सो मोर गति। तो इस तरह से कथावाचक जो है अगर उसको ध्यान से नहीं सुने तो ऐसी परिस्थितियों में भी व्यक्ति फंस जाता है। तो सुनना चाहिए कैसे, अच्छे उत्तम श्रोता बनकर, जिस तरह रुक्मणी जी ने ध्यान पूर्वक नारद मुनि से कृष्ण का वर्णन सुना और उसके बाद अपना हृदय उनको दे दिया, लेटर लिखा पहला लव लेटर कि कृष्ण मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूँ तुम्हारे बिना मैं रह ही नहीं सकती है। तो कृष्ण भगवान ने सोचा ये तो मुझसे कभी मिली नहीं है तो मुझसे प्रेम कैसे करती है, तो उसमें लिखा था आप ऐसा सोचेंगे कि मैं तो आपसे कभी मिली नहीं हूं तो फिर आपको मैं बताना चाहती हूं कि मुझे आपसे प्रेम हुआ है आपके बारे में सुनकर नारद मुनि के द्वारा, सुनने मात्र से कृष्ण प्रेम जागृत हो सकता है। तो आपको जरूरी नहीं कृष्ण आएंगे तभी प्रेम होगा, सुनते रहेंगे कथाओं को तो प्रेम जागृत होगा। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से कथा को सुनकर अमर का वरदान पाया, अपने शरीर को जन्म मृत्यु चक्र से छुड़ा लिया। अर्जुन ने कृष्ण की कथा को सुनकर परम गति को प्राप्त किया। सुभद्रा महारानी के गर्भ में अभिमन्यु ने सुन करके चक्रव्यूह की रचना को तोड़ना सीख लिया, और इसी तरह कयादु के गर्भ में रहते हुए ही प्रहलाद महाराज ने सारा का सारा भागवत ज्ञान अपनी माता के गर्भ में ही सीख लिया था, क्योंकि गर्भ में हमारी सबसे पहली इंद्री जो बनती है वो कौन सी है, सेंस ऑर्गन्स, कान सबसे पहले, और इसीलिए दो भी दिए जाते हैं, इसलिए नहीं दिए जाते कि इधर से सुनो इधर से निकाल दो, इस कान से उस कान टेम्पल, इस कान टेम्पल का मतलब ये नहीं, इस कान से उस कान, इस कान का मतलब है इस कान से भी और इस कान से भी श्रवण अंदर अंदर है, दोनों कानों से अंदर, इस कान से भी उस कान से भी, ये है इसका। तो इसलिए ध्यान पूर्वक श्रवण करें, रोज सुने, तो गर्भ में ही इंद्री बन जाती है कौन सी, कान। और जब बूढ़े होते हैं तो सबसे पहले कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगता है, सुनाई कम देता है आजकल, तो इसीलिए भगवान कहते हैं बहुत कम समय के लिए मैंने तुम्हें ये इंद्रियां दी हैं सुनने की योग्यता, जितनी जल्दी हो सके इसको ध्यान पूर्वक सुने। ये अविद्या की जो छाले हैं हमारे मुंह में, जिनसे हमारे मुख से कृष्ण का नाम उच्चारण नहीं होता, जप नहीं होता। 16 माला पूछी जाए तो कहते हैं 2 माला होती है, वो व्यक्ति का जीवन में जप होगा, उसके मुख से कृष्ण का रसीला नाम निकलेगा, उसको स्वाद आएगा बहुत ज्यादा, तब आएगा जब उसके कानों में औषधि जाएगी, किसकी, कथा, कृष्ण कथा, श्रवणम श्रवणम श्रवणम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री रुक्मण द्वारकाधीश भगवान की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री पंच तत्व गौर निताय की, पदित पावन श्रील प्रभुपाद की, निताय निताय गौर हरि प्रेमानंदे,
श्री प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की जय।